प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व कि आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
प्रभु में हमारे सभी मित्रों व भाई बहनों को सत्य वचन टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल हैं और आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। तो मित्रवर, हम भी आपके लिए परमेश्वर का सत्य वचन लेकर उपस्थित हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम लूका रचित सुसमाचार का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। लूका ने यूनानी पाठकों को ध्यान में रखते हुए इस सुसमाचार को लिखा है और यीशु को मानव पुत्र अर्थात एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। यूनानी लोग एक सिद्ध मानव की खोज में थे। लूका रचित सुसमाचार उनकी इस पिपासा को तृप्त करता है। संभवतः आपकी भी यही पिपासा हो, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ध्यानपूर्वक इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों ताकि आप वास्तव में इससे लाभ उठा सकें। सो इसी परिचय के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु और प्रेमी पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि जिस प्रकार से आपने अब तक हमारी सहायता की है, आज भी इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमारी सहायता करने की कृपा करें। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सिखाएं और अपने वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें ताकि हम इस पर विश्वास कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी गंभीर रोग से पीड़ित है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, किसी बुरी आदत में घिरा हुआ है, चिंता में है, संकट में है, प्रभु आप उसकी सहायता करने की कृपा करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दिनों हम नए नियम से लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 18वें अध्याय को प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे जो देहधारी हुए। दूसरी ओर मैं ये विश्वास करता हूं कि वह सिद्ध मानव थे, एक वास्तविक मनुष्य। मैं विश्वास करता हूं कि वह रोते और हंसते भी होंगे, वह हास्य और व्यंग भी करते होंगे। प्रभु यीशु मसीह पूर्णता मानव थे। उनकी संगति में रहने वाले वास्तव में उनकी बातों में आनंद लेते होंगे। मुझे वे चित्रकार कतई पसंद नहीं जो प्रभु यीशु मसीह को हमेशा गंभीर मुद्रा में दिखाते हैं। मैं ये जानता हूं कि आप किस प्रकार की व्यक्ति की संगति में अधिक रहना पसंद करेंगे। मैंने तो सर्वदा उन प्रचारकों की संगति में अधिक आनंद प्राप्त किया जिनके हास्य और व्यंग ने मेरे मस्तिष्क को और भी अधिक पैना किया। मेरा विश्वास है कि हमारे प्रभु जी इस कला में बहुत निपुण थे। स्वाइये हम ऐसी ही एक घटना को देखें। आप हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखें। यदि बाइबल की प्रति नहीं है तो ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 1-7 पद, लूका 18 अध्याय 1-7 पद, इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये बताने के लिए कि निराश हुए बिना उनको सदैव प्रार्थना करना चाहिए ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास बार बार आकर कहती थी, मेरा न्याय करके मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो उसने उसकी ना सुनी। अंत में उसने सोचा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, फिर भी इसलिए कि ये विधवा मुझे तंग करती है, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह लगातार आकर मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, इस अधर्मी न्यायाधीश ने क्या कहा? तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना करेगा जो रात दिन उसे पुकारते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यहां एक विधवा और अधर्मी न्यायाधीश के विषय में बता रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जब इंग्लैंड के लंदन नगर पर भयंकर बमबारी हो रही थी। लंदन के एक आराधनालय के ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ था जो बड़ा महत्वपूर्ण था, और वो वाक्य था, यदि आपके घुटने आपस में टकराने लगें, यदि आपके घुटने आपस में टकराने लगें, तो घुटनों के बल प्रार्थना के लिए बैठ जाइए। मित्रों, यहां प्रभु यीशु मसीह यही बात बता रहे हैं कि मनुष्य को संकट के समय निराश होने के स्थान पर निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, और इसी से संबंधित प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत सुनाया जिसमें एक अधर्मी न्यायाधीश तथा विधवा का चित्रण किया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विधवा द्वारा लगातार विनती करने पर एक अधर्मी परमेश्वर का भय न मानने वाला लापरवाह न्यायाधीश भी उस विधवा का न्याय चुकाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो क्या परमेश्वर पिता जो धर्मी है, मानव से प्रेम करता है, दयालु कृपालु तथा अनुग्रहकारी है, तो क्या वह तुम्हारी प्रार्थना सुनकर न्याय नहीं चुकाएगा? प्रेरित पौलुस कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना एक मनोवृत्ति है, ये कोई कार्य नहीं है, क्रिया नहीं है। प्रार्थना एक मनोवृत्ति अर्थात आचार व्यवहार है। प्रार्थना आपके होठों की क्रिया से कहीं अधिक व्यवहार है। एक प्रसिद्ध प्रचारक ने अपनी स्थानीय मंडी को सिखाया कि जब कोई व्यक्ति मक्के की फसल के लिए प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उससे अपेक्षा करता है कि वह फावड़ा और खुरपा लेकर आमीन कहे। आप हर समय अपनी मक्के की फसल के लिए प्रार्थना में पड़े नहीं रह सकते, ये बड़ी पुण्य मूर्खता है। प्रभु जी कहते हैं, प्रार्थना करें और काम पर जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, निराश हुए बिना मनुष्य को सदैव प्रार्थना करना चाहिए। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह तुलनात्मक दृष्टांत नहीं है, वरन विरोधाभासी दृष्टांत है। दृष्टांत सच्ची कथाएं हैं, काल्पनिक कहानियां नहीं है। दृष्टांत वो कथा है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने दिव्य सत्य को चित्रित करने के लिए प्रयोग किया है। आज परमेश्वर के समीप जाने से आप क्यों निराश होते हैं? ध्यान दीजिए, वह अधर्मी न्यायाधीश नहीं है, परमेश्वर धर्मी है, वो सच्चा न्यायाधीश है। आप परमेश्वर के समीप जाने से क्यों निराश होते हैं? वह आपकी प्रार्थना सुनना और उसका उत्तर देना चाहता है। वह आपकी प्रार्थना पर अपना कान लगाए रहता है। वह आपके स्थान पर स्वयं क्रियाशील होना चाहता है। वह आपकी समस्या में हस्तक्षेप करना चाहता है, सम्मिलित होना चाहता है। आप इस विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप अपने निवेदन लेकर आएं और उसकी पवित्र उपस्थिति में ठहरें तो सही। वो निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा, उसका उत्तर देगा। सुनिए प्रभु यीशु मसीह यहां क्या कह रहे हैं। आठवें पद को देखिए, मैं तुमसे कहता हूं कि वह उनका न्याय शीघ्र करेगा। फिर भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? और तब 9-14 पदों में हम फरीसी और कर वसूल करने वालों के संबंध में एक दृष्टांत सुनेंगे। आइए इस दृष्टांत को सुनते हैं। उसने उन लोगों से जो इस बात के लिए अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और जो दूसरों को तुच्छ समझते थे, ये दृष्टांत कहा, दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर स्वयं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्यभिचारी नहीं हूं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और जो कुछ मुझे मिलता है सबका 10वां अंश तुझे देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाला दूर खड़ा था, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, ना कि वह दूसरा मनुष्य, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है दीन किया जाएगा, और जो अपने को दीन बनाता है बड़ा किया जाएगा। मित्रों, प्रभु जी प्रार्थना के संबंध में एक अन्य दृष्टांत यहां पर सुनाते हैं। इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं को परमेश्वर की उपस्थिति में धर्मी ठहराता है और अपने धर्म के कामों की चर्चा करता है, और प्रभु यीशु मसीह से कहता है, अर्थात परमेश्वर के सामने वो इस बात का दावा करता है कि मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूं, मैं ठग नहीं हूं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और चुंगी लेने वालों के समान नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, दशमांश देता हूं। ये अपनी धार्मिकता का दावा करता है। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं को पापी मानता है, दीनता के साथ स्वयं को पापी और अधर्मी स्वीकार करता है, और परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने का साहस भी नहीं जुटा पाता है। प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं और एक सिद्धांत भी यहां पर बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, और तब वो एक सिद्धांत बताते हैं, और इस सिद्धांत के द्वारा वो परमेश्वर के परिदृश्य को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह दीन किया जाएगा, और जो अपने को दीन बनाता है वह बड़ा किया जाएगा। मित्रवर, आप क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं, इसकी चिंता ना कीजिए। आप केवल यह विश्वास कीजिए कि परमेश्वर पिता दयालु हैं, कृपालु हैं, वे दीनों को बचाते हैं। तब आइए 15 से 17 पदों को देखें। इन पदों में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बालकों को आशीर्वाद देते हैं और परमेश्वर के राज्य से संबंधित एक महान सिद्धांत के विषय में बताते हैं। आइए देखें 15वें पद से देखें। लोग अपने बच्चों को भी उसके पास ला रहे थे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु जब चेलों ने देखा तो वे उन्हें झड़कने लगे, परंतु यीशु ने पास बुलाकर उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता वह कभी भी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। मित्रों, आज संसार बच्चों के साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार करता है। कैसा कैसा अन्याय बच्चों के साथ नहीं होता। न केवल अपराधी वर्ग बल्कि धार्मिक वर्ग धर्म के नाम पर बालकों का शोषण करते हैं। लेकिन प्रिय बालकों, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बुलाते हैं, वह तुमसे प्रेम करते हैं। वो कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, इन्हें मेरे पास आने से ना रोको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही पावन हृदय के लोग प्रवेश पा सकेंगे। ध्यान दें, प्रभु जी इस विषय में क्या कहते हैं। 17वें पद को देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बच्चे के समान ग्रहण नहीं करता वह कभी भी उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब 18 से 23 पदों में हम देखेंगे कि प्रभु जी एक युवा अधिकारी का सामना करते हैं और उसके सामने 10 में से 5 आज्ञाओं को रखते हैं। इसके विषय में आप मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 16 से 30 पदों में भी और मरकुस 10 अध्याय के 17 से 31 पदों में भी पढ़ सकते हैं। इस कथा में प्रभु यीशु मसीह इस धार्मिक युवा अधिकारी के व्यवहार की पूरी पूरी जांच पड़ताल करते हैं। आइए देखिए 18वें पद से देखिए। फिर किसी एक अधिकारी ने उससे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न किया, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई उत्तम नहीं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और माता का आदर करना। उसने कहा, मैं इनको बचपन से मानता आया हूं। जब यीशु ने यह सुना तो उससे कहा, तुझ में अभी एक बात की कमी है। ध्यान दें, तुझ में अभी तक एक बात की कमी है। अपनी सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों को बांट दे तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा, और आकर मेरे पीछे चल। परंतु ये सब सुनकर वह बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह अत्यंत धनी था। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह ने इस धार्मिक युवा अधिकारी की जांच पड़ताल में ये पाया कि वह परमेश्वर की अपेक्षा धन को प्राथमिकता देता है। जो व्यक्ति धन को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की अपेक्षा धन से अधिक प्रेम करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि वे धन के लोभी हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह कुछ कहते हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह के शब्दों पर ध्यान दें। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए। 24 और 25 पदों में प्रभु जी क्या कहते हैं? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, क्योंकि ऊंट का सुई के छेद में से निकल जाना किसी धनी व्यक्ति के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से सहज है। श्रोता, धन मनुष्य को परमेश्वर से पृथक कर देता है, उसे परमेश्वर से दूर ले जाता है। धन संपत्ति ने इस युवक को प्रभु यीशु मसीह से अलग कर दिया। आज हमारे मध्य में कितने ऐसे लोग हैं जो धन संपत्ति के कारण, धन के लोभ के कारण अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से अलग हो गए हैं। मित्रवर, ये व्यक्ति कौन था? हम इसे नहीं जानते। संभवतः आप इसके समान हो। क्या वह यीशु के पीछे हो लिया? क्या उसने प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर यीशु मसीह का अनुसरण किया? संभवतः हाँ, हो सकता है वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया हो। क्या आप हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएंगे? मित्रवर, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, किंतु क्या आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या आप धन से प्रेम करते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या है? तब 26वें पद से आगे देखें। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो किसका उद्धार हो सकता है? परंतु उसने, अर्थात यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव हैं, वे परमेश्वर के लिए संभव हैं। इस पर पतरस ने कहा, देख, हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे चल पड़े। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने अपना घर, पत्नी, भाई, माता पिता या बच्चों को परमेश्वर के राज्य के लिए छोड़ा हो, और वह इस समय कई गुणा अधिक तथा आने वाले युग में अनंत जीवन ना पाए। मित्रवर, यह अत्यंत महत्वपूर्ण वचन है। ये प्रत्येक सेवक के लिए है, उस व्यक्ति के लिए है जिसने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण किया है, उनकी शिष्यता को स्वीकार किया है। ये पद हमको सिखाता है कि परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं रहता, परं वास्तव में संसार सदैव परमेश्वर का ऋणी है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए जो कुछ भी छोड़ा है, वो इस समय कई गुणा अधिक तथा आने वाले युग में अनंत जीवन प्राप्त करता है। तब 31 से 34 पदों में प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हैं, किंतु उनके चेले इस बात को समझ नहीं सके। आइए देखें। तब उसने 12 को एक और ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जा रहे हैं, और मनुष्य के पुत्र के संबंध में नबियों के द्वारा जो कुछ लिखा है वह सब पूरा होगा, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और उस पर थूका जाएगा। कोड़े लगाने के पश्चात वे उसे मार डालेंगे, तब तीसरे दिन वह जी उठेगा। पर इनमें से कोई बात उनकी समझ में ना आई, अतः ये बात उनसे गुप्त रही और जो बातें कही गई थीं वे उन्हें समझ ना पाए। तब अग्रिम पदों में प्रभु यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करने से पूर्व एक अंधे भिखारी को चंगा करते हैं। आइए इस पर विचार करते हैं। किंतु इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ बाइबल आलोचक इस घटना की ये कहकर आलोचना करते हैं कि मती ने दो अंधों का उल्लेख किया है, जबकि मरकुस और लूका एक अंधे के विषय में बताते हैं। मित्रवर, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। वास्तव में ये दो ही अंधे भिखारी थे, किंतु उनमें से बर्तिमाई क्रियाशील था। उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और उसी ने उनसे दृष्टिदान मांगा और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया और बर्तिमाई प्रभु जी के पीछे हो लिया। आप जानते हैं कि चित्र में वही आता है जो कैमरे के ठीक सामने रहता है। 35 से 43 पदों में हम देखते हैं कि यरीहो के मार्ग पर एक अंधा बैठा हुआ है और यीशु मसीह का शब्द सुनकर, उनकी आहट सुनकर उन्हें पुकारता है और कहता है, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। मित्र, इस अंधे व्यक्ति ने पहचाना कि यीशु कौन है, क्या है, उनकी क्या योग्यताएं और उनकी क्या सामर्थ्य है। उसने विश्वास किया कि यीशु उसे चंगा करने की योग्यता रखते हैं। मित्रों, दृष्टि पाने के पश्चात वह यीशु के पीछे हो लिया, उनका सच्चा अनुयायी हो गया। मेरी प्रार्थना है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकें, उन पर विश्वास लाएं और उस जीवन को प्राप्त कर सकें जो प्रभु जी आपको देना चाहते हैं। अब इन वचनों के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।